चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो पेज नंबर 74 है, इंसान कामिल किताब शहीद मुर्ज़ा मतहरी की। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बकरा की उसी मशहूर आयत जो कि इमामत के लिए एक दलील के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से हम जो है इमामत को आम नबुवत से ऊपर समझते हैं कुरान की आयत की रूह से, क्योंकि इमामत जो खुदा है वो बालातर है। एक नुक्ता मैं अर्ज करूं, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं, वो ये है कि इमामत और आम नबुवत में फर्क क्या है। नबुवत आम्मा जिसको कहते हैं, उसमें फर्क ये कि नबुवत आम्मा का काम इराअतुत तरीक है, यानी रास्ता दिखाता है, सही रास्ता और गलत रास्ते की पहचान करवाना। आम अंबिया जो 124,000 आए हैं, उनमें से हर नबी इमाम नहीं था। इमामत का मतलब यह है कि लीडिंग करना, फ्रंट फुट पे आके लीड करना, गाइड फराहम करना, बातों से सिर्फ नहीं, रास्ता दिखाना नहीं, रास्ते पे चलाना है, रास्ते में साथ लेके जाना है। साथ ले जाने का मतलब क्या है, वो खुद फ्रंट पे है, वो लीड कर रहा होता है, जैसे पेश इमाम फ्रंट पे होता है। तो वो इमामत का मतलब ये है कि वो फ्रंट पे होगा हमेशा, वो काम जो दूसरों को कह रहा है उससे पहले वो खुद कर रहा होगा और कहेगा आओ चलो मेरे साथ, आओ निकलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ अंजाम दो, मैं लीड करूंगा, तुम लोग मेरे पीछे। ये मतलब है इमामत। शहीद मुतहरी इस आयत से क्या गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, जो बहस है वो है इंसान की माहियत। माहियत अरबी जबान का लफ्ज है, और असल में जो लफ्ज है माहिया यानी व्हाट इज दैट, वो क्या है, इसी से टर्मिनोलॉजी निकली। फलसफे में भी इस्तेमाल होती है, लॉजिक या मंतिक के इलम में भी इस्तेमाल होती है, अकायद में भी इस्तेमाल होती है। माहियत, माहियत यानी किसी चीज की असलियत और हकीकत। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे नेचर के का लफ्ज भी आ सकता है, ओरिजिनलिटी जिसको आप कहते हैं, या पता नहीं एसेसनेस पता नहीं कहते हैं, हकीकत। ये माहियत है, किसी चीज की हकीकत और असलियत। अब आते हैं, फरमाते हैं कि देखें इंसान की जो माहियत है और हकीकत है और असलियत के बारे में इख्तलाफात हैं कि भाई इंसान असल में है क्या। ये एक जैसे मंतिक में कहते हैं अल इंसान हैवान नातिक, यानी अभी तक मंतिक का ये नजरिया था, अरिस्टोटल की मंतिक है वही अरस्तु की, तो इंसान की तारीफ किया वो बोलने वाला जानवर या सोचने वाला जानवर, ये तर्जुमा यूं यूं किया गया है, डार्विनिज्म आ गई इसके अंदर। नहीं, इंसान जो है बोलने वाला और सोचने वाला जानवर नहीं है, अगरचे हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं, लेकिन आयतुल्लाह जवादी आमली ने जो इसको बेहतरीन तरीके से हमारी सदी में पेश किया है, फरमाया नहीं, इंसान एक मलकूती हकीकत है, न बोलने वाला, टॉकिंग एनिमल नहीं है, या जो है वो एनिमल नहीं है जो सिर्फ सोच भी सकता है। खैर, तो कह रहे जी दो थ्योरीज हैं बेसिकली इसके ऊपर, एक नजरिया है खुदा परस्तों का, दूसरा नजरिया है मादा परस्तों का। खुदा परस यानी जो इलाही अदियान पर, दीन पर और उनकी पेश करदा थ्योरीज पर यकीन रखते हैं, उनका नजरिया, दूसरा है मेटेरियलिस्टिक सोच रखने वालों का। खुदा परस्तों के नजरिए में इंसान की डिफिनेशन क्या होगी और हकीकत और ओरिजिनलिटी और असलियत क्या होगी, तो फरमाते देखें दे यार, ये इंसान जो ना दो हिस्सों का एक मरकब है, एक जिस्म है उसके पास, एक उसकी रूह है, और इंसान की जो रूह है वो जावेदानी है, हमेशा रहने वाली चीज है, यानी इमोरालिटी जिसको हम कहते हैं ना कि मरने वाली नहीं है, फॉर एवर टाइप की चीज है, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में जो है, यानी रूह कभी डिकम्पोज नहीं हो जाती, फना नहीं हो सकती, रूह के लिए फना नहीं है, इंसान के मरने से रूह फना नहीं होती। इंसान के मरने से मतलब क्या, जिस्म के मरने से, जिस्म अगर डिकम्पोज भी हो जाए तो हम नहीं कहेंगे वो इंसान नाबूद और फना हो गया। हम इस मौजू को मौत और हयात के फलसफे को लेकर, क्योंकि आप लोग मुसलसल ऑडियंस हैं कई उससे अरसे से, साल दो ढाई साल तीन साल से, तो मेरे लिए ईजी है आपको समझाना। हम पहले के ऊपर बात कर चुके हैं कि मौत फना का नाम नहीं है, मौत डिकम्पोज होके फिनिश होने का नाम नहीं है, अदम हो जाने का नाम नहीं है। तो कह रहे हैं एक तो ये थ्योरी है, यानी ये जी इंसान की हकीकत और असलियत और ओरिजिनलिटी उसके जिस्म के मरने से, डिकम्पोज होने से, फना होने से, गल सड़ जाने से खत्म नहीं होता, ये खुदा का नजरिया है, बल्कि वो ट्रांसफर हो रहा होता है किसी और बड़ी दुनिया के अंदर, جہاں پر اس نے ایک مدت نامعلوم تک رہنا ہے، ٹائم فریم نہیں دیا خدا نے کب تک رہنا ہے. دو مقابلے میں میٹریلسٹک تھیوری ہے. میٹریلسٹک تھیوری کیا کہتی ہے کہ نہیں، انسان مطلب یہی باڈی ہے، یہی اس کی اوریجنالٹی اور حقیقت اور اصلیت کیا ہے، یہی جسم ہے، مکمل طور پر ڈیکمپوز ہو جاتا ہے اور ختم ہو گیا، نشت و نابود ہو گیا، عدم ہو جاتا ہے. یعنی اس نظریے کی بنیاد پر کیا ہے جی، بدن اور جسم کے تحلیل ہو جانے سے، فنا ہونا، گڑ جانے سے، ڈیکمپوز ہو جانے سے انسان کی شخصیت بھی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، ختم ہو گیا اس کا. ہاں، اس کے لیے میٹریلسٹک جو سوچ رکھتے ہیں انہوں نے کچھ اور ہیلپ فل تھیوریز لا کے تھوڑا سا وہ کرنا شروع کیا. مثلا کریکٹر، مثلا اس کی خدمات. کہتے جی بندہ مر کے گل سڑ کے ختم ہو گیا، اس کی یہی حقیقت تھی، لیکن اس کی خدمات زندہ ہیں. جی ہم بھی کبھی کبھار اس طرح کے ورڈز کہتے ہیں وداؤٹ اس کے کی اس طرف توجہ ہم دے دیں. کہتے جو باقی رہے گا جی بس وہ کہ ادو ستاری دی تو ڈیکمپوز ہو کے ختم ہو گیا، اس کا ادارہ چل رہا ہے، بس اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا ادارہ ہے. مطلب یہ اس طرح ہے، اس کی اوریجنالٹی نہیں، اس کی شخصیت. آگے جائیں گے انشاءاللہ. پھر کہہ رہے جی باوجود اس کے کی انسان کی حقیقت، ماہیت یعنی حقیقت اور اوریجنالٹی اور اصلیت کے بارے میں اتنا بڑا ڈفرینسز موجود ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں ہم مشترکہ وہ رکھتے ہیں، اختلاف نہیں رکھتے ہیں، میٹریلسٹک تھیوری رکھنے والے بھی اور جو الہی نظریات رکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی. دونوں کی کیا ہے آپس میں ایک کیا کہتے ہیں اتفاق ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں بھائی، کچھ ایسے مسائل ہیں انسان سے جڑے ہوئے ہیں جو میٹریلسٹک جو ہے نا اور مٹیریل سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ اس کو میٹریلسٹک اور مٹیریل کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، آپ اس کیٹیگری میں اس کو ڈال ہی نہیں سکتے ہیں. ان کو معنویات کا نام دیا ہے. جیسے اس نے ارسطو نے بھی جب وہ کتاب کمپائل کی اس کے بعد ان کے اسٹوڈنٹس نے، تو دیکھا کہ کچھ ایسے ہی مسائل آ رہے ہیں جس کو میٹریلسٹک تھنگس میں نہیں ڈال سکتے ہیں. تو وہ کتاب وہ کمپائل کر کے چپٹر بنا رہا تھا، فزکس لکھتا جا رہا تھا، تو اس نے کہا اب کیا کروں میں. تو اس نے ایک ٹائٹل بنایا، کہا کہ وہ ٹاپکس جو فزکس کے چپٹر کے بعد آتے ہیں، یعنی اس کو اس نے دیا کہ کیا کہتے ہیں آفٹر فزکس، مثلا فرض کریں فار ایگزامپل، یا جو ہے ماورائے مابعد الطبیعیات، اس کا اس نے کہا دیا دا میٹرز آفٹر چپٹر آف فزکس. یہی ٹرمینالوجی بن گئی اور صحیح بھی بن گئی. اچھا یہ مانتے ہیں، ہاں جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جی جو انسان کو شخصیت دیتی ہیں، اس کی ایک پرسنالٹی بناتی ہیں، اس کو ایک ویلیو دیتی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہے انسان کی جو شخصیت ہے، قدر و قیمت ہے، ویلیوز ہیں، وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے. اگر انسان سے ہم یہ چیزیں لے لیں، یہ خصوصیات ان سے ہم لے لیں، چھین لیں ہم ان سے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اینیمل اور ہیومن میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا ہے. انسان کی انسانیت، یعنی دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں انسان کے اندر جو انسانیت والی صفت ہے وہ اس کی باڈی سے تعلق رکھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، صفت تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو بیہیویئرز ہیں، اس کے مختلف چیزیں ہیں، وہ اس کی جسم سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر موجود کچھ خصلتیں ہیں، کچھ عادتیں ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ہیں، اسپیشلٹیز ہیں، کچھ اس کی ویلیوز ہیں، اس کی وجہ سے اس کی شخصیت بنتی ہے، جس کو ہم انسانیت بھی کہتے ہیں. بعض وقت فلاں انسان حیوان بن گیا ہے، وہ حیوان تو نہیں بن گیا، وہ جسم میں اسی طرح دو ہاتھ دو پاؤں والا انسان ہی ہے. مثلاً چنگیز خان بربری اور حیوان بن گیا، کون سا حیوان بن گیا، کتا بن گیا، خنزیر بن گیا، بن گیا. کہتے نہیں جسم تو وہی تھا، پھر کس بات کے لیے حیوان بن گیا. کہتے نہیں بائی کریکٹر، بائی بہیویئر، بائی ایکٹیویٹی، بائی رول، وہ حیوانیت والا رول کیا اس نے، درندہ جیسے کرتا ہے، چیپ آڑ کے زندہ جانور کو، ابھی جسم میں جان ہے کہ وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ جو اینیمل پلانٹ اور اس طرح کی جو ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، تو کہنے اس کو کیا بولتے ہیں جی، یہ درندگی درندوں کے اندر ہے. اگر کوئی انسان یہ کام کرے تو ہم کہتے ہیں درندہ ہو گیا ہے. درندہ تو نہیں ہو گیا، جسم تو اس کا ٹھیک ہے. اچھا مٹیریل جو اسکول آف تھاٹ ہے، میٹیریلسٹک اسکول آف تھاٹ، وہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے ان چیزوں کو، اس کو انسانیت کا نام دیتا ہے، ہیومینٹی. اور آج سب سے بڑا نعرہ ہے ہیومینٹی کو ایک مذہب بنا کے پیش کر رہے ہیں، بلکہ آج کہتا ہے کہ शहीद बड़े इजी अल्फाज में समझाते हैं, कहते हैं इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो शख्स एक सर और दो कान रखता हो, उसके नाखून चिपटे हों, कद सीधा हो, तो वो इंसान है। यानी ये जो मौजूदा शक्ल सूरत है, ख्वा कोई भी हो और कैसा ही क्यों ना हो, ये वही बात है जो सादी ने, शेख सादी ने अल्फाज में कही थी कि तन आदमी शरीफ अस बेजान आदमियत, नहमीन लिबास जीबास निशान आदमियत, अगर आदमी बे चश्म अस्त तो दहान व गूशे बीनी, चिमियान नक्श दीवार और मियान आदमियत। बहुत खूबसूरत शेर है और बड़ा मशहूर है, उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में भी, और इसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू और डिबेट्स इंटरनेशनली लेवल पे एकेडमिक बाउंड्रीज में और आउट ऑफ बाउंड्रीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। सादी कह रहे हैं इंसान का बदन उसकी रूह के बायस काबिल कदर है, यानी इंसान की उसकी जो रूहानियत है, उसके पास जो मानवियत है, जो उसके पास इंसानी सिफात है, उसकी वजह से उसकी वैल्यूज हैं। सिर्फ ये मुनासिब बदन ही आदमियत की निशानी नहीं है कि क्योंकि वो दो हाथ और सर और आंखें और दो पैर रखता है और सीधे जो है सुतवा एक बॉडी रखता है इसलिए जो है वो इंसान कहलाएगा। नहीं, उसके अंदर इंसानी की आदमियत की कुछ और क्वालिटीज हैं, उसकी वजह से हम उसको कहते हैं। अगर इसी मुंह नाक कान और आंख का नाम ही इंसान है तो फिर दीवार पर बनी हुई आदमी की तस्वीर और खुद उस आदमी के में क्या फर्क रहेगा? अगर हमने उसकी शक्ल और सूरत और जिस्म को इंसान और आदमियत कहना तो कहते तुम एक तस्वीर ड्रॉ करो, तस्वीर को छोड़ो मुजस्मा बना लो। आजकल तो पता नहीं 3D जो प्रिंटर आए हैं, जो स्मार्ट हमारी टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसी तरह जो होलो टेक्नोलॉजी के नाम से आई है जिसमें आदमी की हू बहू एक और बनाते हैं। क्लोन की जो मसला आ रहा है, क्लोनिंग करने का जो मसला आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि कल को मुझ जैसा एक मशीनी इंसान तैयार हो जाएगा। सेम टू सेम मेरी नाक आंख कान सब कुछ वही है, सेम टू सेम मेरी शक्ल सूरत और बॉडी रखता है, मुझे रोबोट बना दिया जाए तो हम उसको भी फिर इंसान की वो मंजिलत दे देंगे, उसके हुकूक, उसके राइट्स, उसकी चीज के बारे में वही कायल हो जाएंगे जो मेरे बारे में कायल हो रहे हैं आप, क्योंकि वही मेरी फोटोकॉपी है वो। तो अगर आपने बॉडी को इंसान की ओरिजिनलिटी कहना है और अगर आपने बॉडी को उसकी असलियत के तौर पे एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट करके इसकी बेस पर सारा कुछ थ्योरी और सिस्टम और निजाम बनाना है और उसके वैल्यूज, कदर और कीमत, तरबियत, तालीम वगैरह 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 डिजाइन करना, तो दस मिन कल आप जो है क्लोन करके आप मेरा एक रोबोट बना लें, उसके लिए भी वही चीजें फिर कायल हो जाएंगे, उसकी भी शख्सियत वही होगी। कह रहे नहीं जनाब, ये तो नहीं हो सकता। हम हमेशा कहते हैं आदमी बनना और आदमी होना मुश्किल है, और एक मिसाल जो तालिब इल्मों के यहाँ मुरतब हुई और मशहूर हो गई, ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गई होजे के अंदर, आज तक यूज होती है, कहते हैं मुल्ला शुदन ची आसान, आदम शुदन ची मुश्किल। कहते हैं कि देखें आपको मुल्ला बनना आसान है, हो सकता है कि बहुत सारी नॉलेज आपके पास आ जाए, बहुत जबरदस्त मुल्ला बन जाए। मुल्ला उस जमाने में इस्तेमाल होता था वो आदमी जो कि बहुत अच्छी तरह इल्म जानता है, बहुत अच्छी तरह किताब को तजियो तहरील कर सकता है, बहुत अच्छी तरह मसाइल को समझ चुका है, उसको मुल्ला कहते थे। अगर तो उर्दू में आ गई और आजकल के जमाने में मुल्ला एक नेगेटिविटी के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, मौलवी मुल्ला वाला लफ्ज, कह रहे हैं कि देखिए मौलवी बनना आसान है आपके लिए, आदम इंसान बनना मुश्किल है। इमाम खुमैनी ने फरमाया था कि इल्म हिजाब अकबर है, वो जो हदीस है उसकी जुमरे में बड़ी जबरदस्त तशरी की, इमाम खुमैनी फरमाया था देखें आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन हो ये तो काफी नहीं, आपके पास इंसानी सिफात नहीं है, अगर अंदर से पाकिजगी नहीं है, बल्कि ऐसा है कि चोर के हाथ में अब टार्च भी आ गई है, रोशनी भी आ गई, पर ज्यादा जो है डिटेल में चोरी कर सकता है क्योंकि उसके पास कुछ नॉलेज भी आ गई है, नॉलेज के जरिए से लोगों को धोखा दे देगा, लोगों को मिसगाइड करेगा, अपनी मर्जी की बातें बताएगा, लोगों को गलत रास्ते पर डालेगा, लोग उसको कहेंगे और बहुत बड़ा अल्लामा फल्लामा साहब है, बहुत बड़ा प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा PhD होल्डर फलान, ये वो अमामा बड़ा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। लौटते हैं बस, अगर इस बदन के माने ही आदमी होने के हैं तो फिर जो लोग माँ के पेट से पैदा होते हैं वो सब आदमी होते हैं, अगर नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आदमी होना सिफात अखलाक और मानवी उमूर का एक सिलसिला है, गोया यूं ही चीजें हैं जिनकी बदौलत इंसान इंसान है। फिर एक और टर्मिनोलॉजी यूज करता है, उस जमाने में शहीद जिस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे थे, ये नई नई इस्तलाहात और टर्मिनोलॉजीज थी जो यूज हो रही थी, वो थी इंसानी कदरें यानी इंसानी वैल्यूज, जैसे हम आज कहते हैं इस्लामी कदरों की पासदारी करो, शायर जिसको हम अरबी में कहते हैं, और भी मतलब टर्मिनोलॉजीज होती है, इंसानी कदरें यानी इंसानी वैल्यूज, وہ تمام چیزیں جو انسان کو قدر و قیمت اور شخصیت عطا کرتی ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہ رہتا، وہ انسانی قدریں کہلاتی ہیں۔ پھر شہید کہہ رہے ہیں میں نے پہلے بھی جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے۔ پھر آپ آتے ہیں جی یہ جو بحث کر رہے تھے کہ آپ ایک انسان کی اوریجنالٹی اور حقیقت اور ریالٹی اور ماہیت کی تلاش کر رہے تھے کہ ما ہی الانسان، وٹ از دا مثلا ہیومن او مین، اس کی آپ اس کوشچن کو فلسفے اور منطق اور دین اور مختلف اس کے اندر تلاش کر رہے تھے تو کرنا کیا تھا آپ نے؟ کہتے ہیں فرد معاشرے میں جو انحراف پیدا ہوتے ہیں ایک انسان میں اور سوسائٹی میں جو ڈیٹریک ہو جاتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسانی قدروں کی ازداد ان کے مقابلے پر کھڑی ہو جائیں، مثلا جو انسانی ویلیوز ہیں اس کے مقابلے میں جو اس کی مخالف اپوزٹ چیز ہے وہ اس کے سامنے، مثلا ظلم آ جائے عدل اور انصاف کے مقابلے پر، کٹھن اور پابندی آ جائے آزادی کے مقابلے پر، بے عقیدتی یا بے دینی اور بد عقیدتی آ جائے، اسی طرح بے اعتدالی وغیرہ مثلا آ جائے عبادت اور خدا پرستی کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، نادانی اور حماقت عقل اور فہم اور سمجھداری کے مقابلے میں آ جائے اور حکمت کے مقابلے پر کھڑی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، یہ ہے متاسفانہ۔ لیکن ایک بڑی ٹرکس جو یوز ہوتی ہیں، حماقت کو عقل کے نام پہ لایا جاتا ہے، ظلم کو عدل کے ٹائٹل سے، کیونکہ کوئی بھی ظالم ظلم کرتے وقت ظلم کے عنوان سے کرے تو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ عدل کے انصاف سے کرتا ہے۔ ظلم کو جمہوریت کے، آزادی کے، فریڈم کے عنوان سے کیا جاتا ہے، سیکیورٹی ریزنز۔ ہمارے آج کا مثلا آج کی زمانے میں آ جائے نا، ایک آدمی کو مسنگ کرنا ہے کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے ہماری حقیقتیں کھل رہی ہیں، اس کو غائب کر دو جی، بندے کو اڑا کے مار دو کہیں پر، اوہ جی پتہ نہیں کہاں گیا، افغانستان میں گیا، وہ تو شام چلا گیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کام کریں۔ یعنی اگر آپ یا سیکیورٹی ریزن ہے، سٹیٹ کے لیے تھریٹ تھا مثلا، اس طرح کی آپ ٹائٹل یوز کریں، ظلم کریں۔ صدام ظلم کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے عراق کی بقا کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے، اتنے سارے علماء کو مار دو، اتنے سارے کرد عوام کے اوپر کیمیکل مار دو، اس لیے کہ عراق کی بقا کے، وہ عراق ہے کس گاجر مولی کا نام، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن شاید انسان کی زیادہ تر انحرافات اس شکل میں نہیں ہوتے ہیں، قدروں کی ضدیں ان کے مقابل کھڑی ہوں، اگر ایسا ہو تو جلد ہی شکست کھا جائیں۔ دیکھو خود شہید بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، انسان کے بیشتر انحرافات اس شکل میں ہوتے ہیں جیسے سمندر میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، چنانچہ بعض اوقات کو ایک انسانی قدر سرطان کی مانند بڑھنے لگتی ہے ایک سوسائٹی کے اندر اور ایک انسان کے اندر، دوسری قدر کو اپنے نیچے دبا لیتی ہے۔ مثلا یہ مسئلہ ہے ابھی بھی افسوس کے ساتھ، ایون ہماری شیعہ دنیا کے اندر بہت سے لوگوں میں ہے یہ، مثلا زہد و تقویٰ کے بجائے، زہد و تقویٰ بجائے خود ایک قدر ہے اور انسانی معیارات میں سے ایک معیار اور سٹینڈرڈ ہے، لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک انسان یا ایک سوسائٹی زہد اور تقویٰ کی جانب اتنی زیادہ چلی جاتی ہے اور اتنا زیادہ اس میں وہ کھو جاتے ہیں کہ ان کے لیے زہد اور تقویٰ ہی سب کچھ ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان کی حالت ایسی بنتی ہے جیسے کہ ایک آدمی جو ہے کاغذ پر ایک انسان کی شکل بنائے، یعنی اس کے اندر موجود کوالٹیز کی شکل بنائے، تو فرض کریں کہ اس کی ناک اتنی لمبی ہو جائے کہ 1 کلومیٹر تک جا رہی ہے، اس کے ہاتھ اور اس کے جسم چھوٹے 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 ہو کے نظر آ جائیں، کارٹون بن جائے، وہ اس کا اندرونی جو انسان ہے وہ اس طرح ہو چکا ہے۔ زہد و تقویٰ میں، انفرادی زہد و تقویٰ میں اس کی ناک لمبی ہوتی گئی ہے، یعنی اتنا آگے چلا گیا، لیکن اجتماعی زہد و تقویٰ اس کا نہیں ہے، اجتماعی رول میں صفر ہے، سیاسی رول میں صفر ہے، باقی رول میں بہت بڑا آزادار ہے، آزاداری میں وہ لمبی ناک بن گئی ہے اس کی۔ دوسری طرف آتے ہیں، تقلید کا قائل نہیں ہے، خمس کا دینے کے قائل نہیں ہے، نماز کا حتیٰ بعض اوقات قائل نہیں ہے، اگر ہم عقائد کے میدان میں آ جائیں شہید کے، اس کی شہید کی پرانی تقریریں ہیں، انہوں نے اس وقت کی ایگزامپلس دی ہیں، یہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں ہمارے پاس؟ آج بھی ہیں یہ مسائل۔ تو پس اس انسان مومن کے بارے میں ہم کیا کہیں گے اگر ہم تھوڑا سا اپنے دنیا میں آ جائیں؟ ہم کہیں گے ایک ایسا انسان ہے جو افراط و تفریط کا شکار ہے، اس کی شخصیت، مانوی شخصیت کو ڈیزائن کریں تو ایسا ہو جائے گا کہ آزاداری میں یہ لمبی سی ایک ناک ہے اس کی، दीगर चीजों में बिल्कुल सुकड़ा हुआ एक चीज है, खालिश ज्यादा बिल्कुल सुकड़े हुए छोटे छोटे कार्टून बना हुआ है, इक्वल नहीं, तमाम सिफात को बराबरी के साथ नहीं लेके जा रहा है। कह रहे देखो ये असल में एक बेस बना रहा था मैं, और इस बेस के अंदर अब हमने असल मौजू की तरफ जाना है, और इस बेस में ये था कि जो मेटेरियलिस्टिक हैं थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, जो मटेरियल के तौर पे इंसान को कबूल करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ मानवीय वैल्यूज के कायल हैं। उसूली तौर पर कहा जा सकता है इंसानी कदरों का लब व लुबाब एक इनवान के तहत बयान किया जा सकता है, फिर खुद उसकी शाखें निकलती हैं। ये वो चीज है जो खुद हमारे आरिफों की इस्तलाह में और आजकल के उलमा की तहरीरों में भी आई है, बल्कि उलमाए अरफा की इस्तलाह में आने से पहले ये हमारे इस्लामी मतून में आई है, कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। इसे यूं बयान किया जा सकता है, इंसानियत का असली मैयार वो चीज है जिसे दर्द रखने या साहेब दर्द होने से ताबीर किया जाता है। मतलब क्या, अब आते हैं जी इंसानियत। कहते हैं कि इंसानियत का असली स्टैंडर्ड है क्या भाई, इंसानियत है किस चीज का नाम। कह रहे जनाब देखें, इंसानियत वो जो दर्द रखने वाला साहेब दर्द, ये असल में मैयार है इंसानियत का। और इंसान इंसान और हैवान में, इंसान जो हैवान है वो दर्द महसूस नहीं करता। शेर जब किसी हिरन को पकड़ता है, खूबसूरत सी बिचारी हिरन को पकड़ता है, बच्चा भी बगल में बैठा हो, चीर फाड़ देता है जिंदा जिंदा उसके बच्चे के सामने, उसे कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ महसूस नहीं करता। ये हैवान है, उसका नेचर यही है। अगर कोई इंसान जो है ना और ये हरकतें करने लगे सोसाइटी के अंदर किसी भी नुमान से, तो उस और हैवान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर ये काम नहीं करता है, वो तकलीफ महसूस करता है, किसी दूसरे इंसान को तकलीफ में देकर, सोसाइटीज को तकलीफ में देकर, इवन हैवानात को, दरख्तों को तकलीफ में देकर, ये जो दर्द है ये उसके इंसान होने की दलील है और यही उसकी इंसानियत है। असल में ये बात करना चाह रहे हैं। मैं यहां रोकता हूं और इंसानियत के ऊपर शहीद ने डिस्कस करना है। मैं थोड़े से एक दो मोटी मोटी बातें आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ किताब में अर्ज कर दूं, अगर ची आने वाली जो मेरी स्पीचेस होंगी, जो दर्स होंगे सीरीज की शक्ल में, उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखें, इंसानियत के बारे में कहा जाता है कि पहला पॉइंट तो इंसानियत में यह है कि जब हम कहते हैं जी ह्यूमैनिटी, इंसानियत होनी चाहिए, मतलब इंसानियत होनी चाहिए वो चीजें जो इंसानी जिस्म के साथ ताल्लुक नहीं रखती हैं और उनमें, बल्कि इंसान की शख्सियत और उसके बिहेवियर्स और उसकी पर्सनालिटी के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, उससे ताल्लुक रखती हैं। हो सकता है कि फला जो है एक शख्स में क्या कहते हैं ये सिफात मौजूद ना हो, लेकिन जिस्मानी एतबार से वो सबसे एक परफेक्ट बंदा हो, खूबसूरत जिस्म हो उसका, हम कद व काठ के एतबार से, हम रंगत के एतबार से, हम शक्ल व सूरत के एतबार से, हर चीज उसकी बड़ी वो हो। जैसे ये जो मुकाबले हुस्न और फलान और फलान और ये जो बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले हो जाते हैं दुनिया में, आलमी जो टाइटल्स मिलते हैं मसलन इनको देखें, लेकिन उन्हीं बंदों को परखते हैं तो उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ना हो, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये जो इंसानी सिफत इंसानियत है, ये खुद इंसान की कोशिश, तरबियत और तालीम, माहौल, उससे ये उसके अंदर परवान चढ़ती है। ये तबीयत या नेचर नहीं बनाता इसको, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा इंसान हो जिसमें इंसानियत माइनस हो, ये पॉसिबल है, ये भी जहन में रखें कि एक ऐसे इंसान को हम देखें जो शक्ल व सूरत का इंसान है, इंसानी सिफत यानी इंसानियत से माइनस है, वो नहीं है उसके अंदर। लिहाजा शक्ल सूरत के इंसान होने से हम उसको इंसान नहीं कहेंगे। अब आते हैं हमारे लिए फायदेमंद कुछ चीजें, भाई क्या चीजें हैं जो इंसान को इंसानियत सिखाती हैं, क्योंकि हमने कहा बाय नेचर उसके अंदर ये चीजें खुद ब खुद से आना शुरू हो जाएं, ये जरूरी नहीं है। अगरची खुदा ने तख्लीक उसकी इंसानियत के ऊपर ही की है, क्योंकि अपनी फितरत पे तख्लीक की है, लेकिन इस इंसानियत को बाहर आने के लिए तालीम और तरबियत, माहौल, ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। लिहाजा हम आते हैं उसकी तरफ। नंबर एक, इल्म मारिफत एक थ्योरी है। इल्म मारिफत जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर क्या कहते हैं इंसानियत का अंसुर ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। यानी पास अगर किसी के पास इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि उसके पास क्या कहते हैं इंसानियत नहीं है। बस आइंस्टाइन फर्ज करें, जो तकरीबन कायनात के हवाले से जो तमाम साइंसदानों में ज्यादा पॉपुलर है, तो वो सबसे ज्यादा इंसानियत रखता था। तो सिर्फ इल्म भी, नॉलेज एज ए इल्म, इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज के तौर पे नहीं, इल्म बेमानी मारिफत के, जो दीन जिसको पहचानवाता है, हाँ उसके अंदर इंसानियत पैदा हो सकती है। इल्म बेमाने इंफॉर्मेशन के बिल्कुल भी काफी नहीं है। दूसरा जो है इसी तरह एक और अंसुर है, वो ये है जो तरबियत के अंदर से आ जाता है, हासिल करता है इंसान, वो इंसान का मिजाज है और बर्ताव है, जो बिहेवियर्स उसको सिखाए जाते हैं शुरू से घर के अंदर, दीगर जगहों पे जो उसको सिखाया जाता है, ये भी डिबेटेबल है। इंशाल्लाह उसके अंदर हमें इसको हम डिस्कस करेंगे तो उसको खोलेंगे कि ये जो मिजाज और वो चीजें ये कितनी इफेक्टिव हैं, जो मिजाज बनाता है। बस हम कहते हैं ना कि फला का मिजाज ऐसा नहीं है, मिजाज कोई नेचुरल कुदरत की तरफ से डिजाइन शुदा किसी चीज का नाम नहीं है। हम खाने पीने के टेस्ट और उसके इंतखाब को आदमी के मिजाज में नहीं डाल सकते। मेरे खाने का टेस्ट, मैं मीठा ज्यादा पसंद करता हूं, इसका मतलब यह है कि क्योंकि मुझे मीठा ज्यादा पसंद है, इसी तरह मुझे अदल और इंसाफ भी ज्यादा पसंद है, ये नहीं होता। अदल और इंसाफ के पसंद और नापसंद होने के लिए कुदरत ने मुझे मुनसिफ बनाया है, लेकिन मेरे इस मिजाज और इस बर्ताव की तरबियत किस तरह की गई है, अदल और इंसाफ की बुनियाद पर की है कि अदल और इंसाफ के साथ मुझे सिखाया गया है या नहीं सिखाया गया है, उसकी जगह जुल्म ने आके मेरे ऊपर हावी हो गया है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह मैं शुगर खाने को या न खाने के बारे में, या मिर्चे खाने और न खाने के बारे में एक इंतखाब रखता हूं और एक पसंद रखता हूं, इसलिए मुझे अदल और इंसाफ के बारे में पसंद और नापसंद है, ये कोई मिजाजी मामला बिल्कुल भी इस मसले में नहीं है। तीसरी चीज फिर इरादे और नीयत है, इंटेंशन जिसको कहते हैं, कि एक और थ्योरी है जी कि इरादा और नीयत इंसान की जो है क्या कहते हैं इंसानियत को डिफाइन करती है। बस अगर सिर्फ इसको भी खोलने की जरूरत है, कोई ये कहे जी कि मैंने अफगानिस्तान में मदर ऑफ जो बम है वो इसलिए मारा था कि मेरी नीयत ठीक थी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी मेरी नीयत में फुतूर नहीं था। हाँ, एक वक्त होता है कि इंसान की नीयत ठीक थी, गलती उससे हुई है, वो एक अलग मौजू है, लेकिन एक दफा इंसान गलत काम इरादे से करता है और फिर कहता है मेरी नीयत तो ठीक थी मदर ऑफ बम मारने में, वो गलत है, ये सही नहीं है। नीयतन ठीक थी, काम भी उसने सही आ, गलती हो गई उससे, वो एक अलग मौजू है, उसके ऊपर हम अलग से बहस करेंगे। कुछ जो है ये एक दो पॉइंट्स थे, मैंने कहा कि अभी मैं इसको रेस कर दूं ताकि बाद में जब डिस्कस करें तो इजी हो जाए। शहीद मुतारी बात कर रहे थे जी कि इंसान के अंदर जो एक टर्मिनोलॉजी आजकल चल रही है वो दर्द रखने या साहेब दर्द होने से है। कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम खुद दर्द के बारे में बहस करनी चाहे, मुमकिन इब्तिदा में ये बात जहन को अजीब सी लगे कि आखिर इसके मानी क्या है। दर्द एक बुरी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसे इंसान को अपने आप से दूर रखना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए, फिर ये कैसे हो सकता है कि इंसानियत के मियार अजीम तरीन कदर क्या हो जाए जी, दर्द रखना हो। क्या दर्द रखना एक अच्छी चीज हो सकता है? हम तो दर्द के लिए जो है पेन किलर्स दवाइयां लेते हैं। कह रहे हम असल में गलती कर रहे हैं, हमें चाहिए कि इसकी असलियत दरियाफ्त करें। मसलन एक बीमारी या एक जख्म है तो जो चीज बुरी है वो इस आफत जरसूम में यानी जरासीम बीमारी और जख्म का वजूद है जो बदन पर वार करता है और बाद में दर्द का सरचश्मा बन जाता है। एक उंगली का कट जाना बुरा है, जो दर्द मैदे या अंतड़ियों में हो इंसान उस दर्द महसूस करे और बलाखरा जो चीज इंसान के लिए बुरी है वो जख्म का वजूद। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं शहीद? असल में कहते हैं ये देखें, ये दर्द जो है ना, दर्द का एहसास करना है, अगर फिजिकली आप इसको एनालाइज करना चाहें, मेडिकली करना चाहें, ये दर्द तो आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि ये दर्द बताता है कि आपके जिस्म के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अगर ये दर्द आपको इन्फॉर्म न कर दे, तकलीफ देकर, तो आपके अंदर तो अंदर से खोखला करता जाएगा वो, और एक ऐसे वक्त में पहुंचेंगे कि जिसमें पॉइंट नो रिटर्न में आप तो खत्म हो गए, उस वक्त पता चलेगा। अगर आपको ये दर्द जैसा साइन मिले, सिग्नल मिलेगा, उस दर्द के सिग्नल के जरिए से आपको पता चलेगा कि जी मुझे मेरे अंदर एक प्रॉब्लम ईजाद हो चुकी है, मैदे या अंतड़ियों में कोई तकलीफ है, मुझे जिसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं एक फिजिकल, उससे फिर उससे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे शहीद मुतहरी मानवीय और रूहानी और सोसाइटी और दीगर चीजों की तरफ। बस कह रहे इस माने में दर्द तो देखो एक अच्छी चीज है, ठीक इंसान के लिए तकलीफ दे, मगर वो इंसान एक को एक खराबी से आगाह और होशियार कर रहा होता है। मसलन इंसान के सर में दर्द हो, उस बात का कोई इम्कान नहीं होता कि कोई खराबी पैदा न हुई हो और दर्द वजूद में आ जाए। मसलन मुझे फ्लू हो जाए तो मुझे फ्लू का की तकलीफ होगी तो मुझे फ्लू होने का पता चलेगा ना, अगर ये दर्द ना हो तो कैसे पता चल जाए। बस ये दर्द हमेशा क्या कहते हैं बुरी चीज नहीं है, असल में जो बुरी चीज है वो उस दर्द के जरिए से जो चीज पता चल रहा है वो चीज है जिसको दूर करना है। मैंने दर्द खुद बखुद दूर हो जाएगा, दर्द तो मुझे अलर्ट कर रहा होता है। अगर दर्द पैदा होता है तो वो आपको खबर दे रहा है, इतला दे रहा है सर में कोई खराबी पैदा हो गई है, आपको फ्लू हो चुका है, आप ठंडे में रहे हैं, आपने जो है ऐसी गजा खाई है कि आपको फूड पॉइजनिंग होने जा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। कहता है दर्द दर हकीकत जो है बेन ही सुरअत और रफ्तार, यानी तेजी और रफ्तार और पानी के दर्जे हरारत की अलामतों की तरह है। जैसे पानी के दर्जे हरारत की जो अलामत है, जैसे मोटर का पानी कम हो जाने की निशानदेही करता है, निशानदेही करने वाली सुई अच्छी चीज है जो मोटर के पानी कम होने की निशानदेही करता है, यानी वो जो सुई होती है गाड़ी के में जो आपको इंडिकेट करती है कि आपकी गाड़ी में पानी है या नहीं है, हीटअप हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये दर्द भी इसी तरह इंडिकेट कर रहा होता है आपको। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं जी कि ये बुरी चीज है, वो तो अच्छी चीज है। अगर मेरे फ्यूल की टैंकी से रिलेटेड जो सुई है वो सुई अगर खराब हो जाए तो मेरे लिए तो परेशानी है कि मुझे पता नहीं चलेगा टैंकी में फ्यूल है या नहीं है। वो तो इंडिकेट करने वाली चीज है, उसको तो ठीक होना चाहिए, वो इंडिकेट करके बताएगी कि तुम्हारी टैंकी में फ्यूल। कहता दर्द भी ऐसा ही है जो आप हमें और हम और आपको इंडिकेट कर रहा होता है। देखें ये शहीद का तरीकेकार था, वो हमेशा क्योंकि हमारा मसला ये कि हम फिफ्थ सेंस से बाहर नहीं जा सकते। थ्योरेटिकली भी इतनी ज्यादातर लोग जो है इतनी अकल को इस्तेमाल करने में बोरियत महसूस करते हैं, उनको 2+2=4 की तरह जो है एक पक्की पकाई चीज चाहिए होती है, और ऐसी चीज जो जो कि आंखें देखें, जो उनके कान सुन सके, जो छू के महसूस कर सके, जो चख के मालूम कर सके, इस तरह के लोग होते हैं। इसीलिए आज ये जो जाकिरीन को पसंद करते हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं और उनके फिफ्थ सेंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, उनकी अकल को, जबकि अकल हुज्जत है, फिफ्थ सेंस तो हुज्जत भी नहीं है। यानी आदमी ऐसा नहीं कि अंधा हो तो वो जो है बेअकल हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। अकल को मिलने वाली चीजें सिर्फ आंखों से तो नहीं मिलती, और भी तो जराए हो सकते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा मसला है, इसलिए शहीद मुतहरी भी हमेशा एग्जाम्पल्स यहाँ मेटेरियलिस्टिक चीजों से देते हैं ताकि हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे कुछ अशार लेके आए हैं मौलवी जो है मौलाना रूम के मसनवी से, इसको हम अवॉइड करते हैं, आप चाहे तो खुद ही पढ़ सकते हैं। अब आते हैं वो अगले मौजू, इसी को इसी एक मिसाल को लेकर आगे आते हैं। हमें कंफर्म हो गया कि दर्द एक अच्छी चीज है जो इंडिकेट करती है किसी खराबी की, इंसानी बॉडी में हो या किसी और चीज में हो। कहते हैं जो शख्स दुनिया में ज्यादा साहिब दर्द और ऐसा दर्द महसूस करे जो दूसरे महसूस नहीं करते हैं, वो इसी निस्बत से उनसे ज्यादा जानने वाला और ज्यादा बेदार होता है, अवेयरनेस रखने वाला शख्स होता है कि वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को महसूस करता है। एक किसी कौम और किसी फर्द के तबाह होते हुए मुस्तकबिल को पहले से महसूस करते के तकलीफ महसूस करता है, किसी दूसरे की तकलीफ को, यमन के ऊपर जो इस वक्त बच्चों की जो तकलीफें हैं वो महसूस करता है, अफगानिस्तान से मुहाजिर होकर बेचारे खौफ के वजह से तालिबान के वहां पर कब्जे के बाद इस्लामाबाद पेंडी और केपीके में आने वाले मुहाजरीन, उनके बच्चे जो पहले वहां रहते थे तो कम से कम कदरे बेहतर हालात में थे, गली कोचों में सर्दी में सोते हुए उसकी दर्द को कोई देखता है महसूस कर लेता है, कोई महसूस नहीं कर लेता है, कोई इतना जो है उसको महसूस करता है कि उठ के इकदाम करता है जैसे हमारे भाई इस वक्त कर रहे हैं वहां पर। ये चीजें हैं। मसलन इसी तरह उसको और मैदानों में लेके जाएं, कह रहे हैं कि जैसे इनसे ज्यादा जाना, कहते हैं बेदर्दी, उरियानी, बेहिस्ती, बेशुरी, बेइदरा के बराबर। ये बेदर्दी असल में वही है जैसे उरियानी, बेहिस लोग, बेशुऊर लोग, बेइदराक लोग, सेंस नहीं रखने वाले, अवेयरनेस नहीं है, जिसको सिंपल उर्दू में बोले तो कहते हैं गवार है, बेवकूफ है, बेगरज लोग हैं, कोई इनको बिल्कुल इनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज ही नहीं है, कोई इनके अंदर इस तरह की कोई चीज ही नहीं है। जबकि दर्दमंदी क्या है? आगाही, अवेयरनेस, शुऊर, बेदारी, इदराक के मसावी है। ये बहुत बहुत अहम है। अंबिया अलैहिस्सलाम आप देखते हैं, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम तड़प उठते थे। आप देखें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या था, दर्द ही तो था ना, जो उम्मत के मुस्तकबिल को लेकर था, जो दीन के मुस्तकबिल को लेकर था, उस दर्द, वो दर्द बैठने नहीं देता था। हजरत अली अलैहिस्सलाम इतनी तकलीफ महसूस करते थे कि बाद वक्त कुएं में जाके सर लगा के चीखते थे, जोर से चीख निकलती थी हजरत की, दर्द तकलीफ महसूस करते थे। खुद हजरत जाते हैं, शायद इस किताब में इस वाक्य को शायद कोट कर रहे हैं आगे कहें, पर मुझे कुछ इस तरह याद आ रहा है। हजरत अली अलैहि सलाम, एक फैमिली थी शहीदों की, बेवा और बच्चे थे, उनके बारे में हजरत को पता चला कि वो बड़े भूखे हैं और बड़े कसम कुर्सी में। हजरत को बहुत तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि आप खुद गए, आटा लेके चले गए, उनकी घर में जाके तंदूर को मैं आग लगाया, लकड़ियां डाली, तंदूर गर्म हो गया तो अपने चेहरे अकदस को तंदूर के करीब ले गए और कहा कि अली, तुम्हारे शहर में ये भूखे सो रहे हैं, तुम्हें कैसे पता नहीं चला इस चीज का? कह रहा है, अली याद करो आतश जहान। अल्लाह अकबर, ये बड़ा अजीब अजीब शख्सियत वाकई। हालत नमाज में है, एक जरूरतमंद की फरियाद कानों में आती है, कहते हैं कि मैं नमाज में हूं लेकिन ये खौफ है कि कहें नमाज खत्म होते वो निकल के चला ना जाए, इशारा करते हैं आओ मेरे अंगूठी उठा लो मेरे हाथ से निकालो, इशारा करते हैं नमाज में अंगूठी निकालो मेरे हाथ से, अजीब है वाकई। रोजे में है, दरवाजे पे ठीक इफ्तारी के वक्त मुसलसल 3 दिन से यतीमों व मिस्कीनों व असीर आ जाते हैं। ये असीर तो गैर मुस्लिम है ना, असीर तो कोई मुसलमान को तो असीर नहीं किया जा सकता ना। असीर का मतलब ये है कि वो गैर मुसलमान जो जंग में पकड़ा गया हो और मुसलमानों की कस्टडी में हो, काफिर जिम्मी जिसको हम यानी के जो अरबी जिसको हम कहते हैं, वो था बेचारा तो नॉन मुस्लिम था, हिंदू हो सकता है, कोई बुतपरस्त था। वो आवाज देते हैं, कहते हैं जी कि हम भूखे हैं, उठा के कहते हैं यार उनको दे, उनकी दर्द को अपनी दर्द भूल गए उनको दर्द। हजरत अली इस्लाम के लेवल पे कोई आ ही नहीं सकता वाकई। कहता है अगर इंसान का मामला ऐसा हो कि वो आराम में हो लेकिन बेदर्द हो और रूह महसूस न करता हो, यानी दर्द महसूस न करता हो, यानी जाहिल बेदर्द हो या वो होशियार हो और अपना दर्द महसूस करता हो, क्या एक इंसान इस बात को तरजीह देगा कि वो होशियार और समझदार दर्द महसूस करे, इस बात को तरजीह देगा कि वो बेअकल कुनजहन अहमक और दर्द को महसूस न करे? कोई भी इंसान नहीं पसंद नहीं करेगा कि मैं बेहिस और बेदर्द हूं, कोई हो ही नहीं सकता है। अमली तौर पे वो करे अलग बात है, वह एक होशियार और आगाह शख्स की बेचैनी किसी जाहिल और बेखबर और बेशख्स के आराम और आसाइश पर फोकियत रखती है। एक आदमी जो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं, बड़े सुकून से बैठा हूँ, कोई गरज नहीं अमन में क्या होता है, कोई गरज नहीं किसी और जगह पे क्या हो रहा है, कोई गरज नहीं हम बगल में कोई भूखा सो रहा है, कोई गरज नहीं कहें पे कोई जुल्म हो रहा है। ये आदमी रहबर का एक जुमला है, मुझे याद है नमाज जुमे के खुतबे में फलस्तीन के मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, सन 1999-98 की बात बता रहा हूँ, कि उस वक्त कहे थे कि वो लोग तो शायद आराम से होंगे जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। कह रहे मैं तो फॉलो करता हूँ, मैं इतनी तकलीफ महसूस करता हूँ कि बेखुदा मुझे रातों को नींद नहीं आती। उस वक्त हम स्टूडेंट परवरदी इतनी दर्द महसूस करते। आपने देख लिया पाकिस्तान में रमजान में वो सैलाब आ गया, खुतबा देते हुए बेसाख्ता वो जो इंसानी दर्द और तकलीफ का एहसास था वो छलक उठा रहबर का, गिरिया करने लगे, कहा कि मर्दों पाकिस्तान के मुसलमान भाई इन हालात में रोजे से भी हैं, इतना सैलाब आया उनके यहाँ, इतनी बड़ी तबाही हो गई, ये देखे तकलीफ। मुमकिन है वहां बैठे हुए हमारे बेहिस हुक्मरानों को इतनी तकलीफ नहीं हो गई, बगल में बैठे हुए एक बेहिस इंसान को नहीं हो, इस दर्द को महसूस नहीं किया, वो जो सरहद के उस तरफ बैठे हुए एक हकीकी इंसान को जो कि कमाल रखता है अपनी जात में, उसने उस दर्द को इस लेवल पर महसूस किया कि वो बावजूद कंट्रोल के न रह सका, उसकी आंखों से छलक पड़ा, उसकी जबान में उसके पूरे आज़ा व जवारे ने उस दर्द के एहसास को बयान किया। फिर एक सकरात की ज़र्बुल मसल देते हैं, फरमाते हैं कि देखें, इंसान अगर सुकरात हो लेकिन बुला पला और कमजोर हो, ये बेहतर है कि वो सूर की तरह हटा कटा हो। कह रहे कि एक इंसान हो, सुकरात हो मतलब क्या, जो दर्द का एहसास रखता है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ढांचे की तरह हो, दुबला पतला हो, कमजोर हो लेकिन दर्द रखता हो, लेकिन मुकाबले में एक ऐसा इंसान है जो बॉडी बिल्डर है, सुअर की तरह हट्टा कट्टा है लेकिन उसके अंदर दर्द ना हो, तो कौन सा बेहतर है, वो दुबला पतला ढांचा या वो जो हट्टा कट्टा सुअर, कौन सा बेहतर है? तो वो दुबला पतला जिसके अंदर दर्द है, इंसानियत है, यानी जो शख्स सुकरात की तरह दाना और आलिम हो लेकिन आसाइश से महरूम हो, फकीर है बेचारा, गदा है, फकीर किस्म का आदमी है, कोई उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है लेकिन दाना है, अकलमंद है, आलिम है, दर्द रखता है, वो बेहतर है उससे, वो सुअर से, सुअर की तरह जो मोटा हटा कटा है और लोगों का भी छीन काट के खाता है, दूसरों के हक पे भी डाका मारता है, दूसरों से काम करवाता है, पैसे नहीं देता है, तो दूसरों को तकलीफ में डालने का सबब बनता है, उससे तो वो बेहतर है। इससे पता चलता है कि हमारी जो लिटरेचर है या अदबियात में है, एक चीज जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, वो अकल से शिकायत का मसला है। ये बजाते खुद एक बड़ी डिबेट है, शहीद करेंगे इस डिबेट को इंशाल्लाह, पढ़ेंगे कि हमारी नज्मो नसर में, बिलखसूस नज्म में अक्सर हम देखते हैं शायरों ने अकल की शिकायत की है, का मसला हत्ता बाज इतने आगे चले गए हैं कि काश हम ये अकल न रखते होते। अलबत्त अकल से ये शिकायत एक और वजह से भी है, एक और पहलू भी रखती है, औरफा की नजर में एक चीज, औरफा की नजर एक और चीज पर आई, लेकिन बहुत से अशखास ने इस बिना पर शिकायत की कि होशियार हसास दाना होना इंसान से आसाइश कर, उर्दू शायरों में भी मैंने देखा है ये चीजें, कह रहे जी आदमी अगर हसास हो, दाना हो, होशियार हो, दूसरों की दर्द और तकलीफ को महसूस करता हो तो फिर उसका अपना सुकून बर्बाद हो जाता है, लिहाजा ना उसको अकलमंद नहीं होना चाहिए, स्टूपिड बेवकूफ होना चाहिए इनके ख्याल में, ताकि वो किसी बेदर्दी रहे, बेहिस किस्म का रहे, तकलीफ का एहसास ही ना करे, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दे, इस आंख से देखकर मुंह फेर ले, यानी एक ऐसा इंसान हो तो कहता बड़े मजे में अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, जो आज की टर्मिनोलॉजीज है, यानी वो शायरी ये कहना चाहते हैं। मसलन एक फारसी शायर की उन्होंने एग्जाम्पल दिया, दुश्मन दुश्मन जान है मन, अस अक्ल मनो हूश मन, काश गुशादे बे नमूद चश्म मनो गूश मन, कहता है कि मेरी जान के दुश्मन जो है ना मेरी अकल और मेरी होशियारी है, कि मैं एक अवेयरनेस रखने वाला बंदा हूं, यही चीज मेरे नुकसानदेह है, मेरी अकल होश मेरी जान के दुश्मन है, क्या अच्छा होता मेरी आंख और कान देखने सुनने से महरूम होते, मेरी आंखें ना होती, कान ना होते, वगैरह वगैरह। एक और शायर कहता है, आकिल मबाश ताग़ा में दीवानगान खुरी, दीवाने बाश ताग़ा में तू आकिलान खुरान कह रहे हैं कोई और शायर कहता है, यार आकिल मत बन जाओ तुम, अगर तुम आकिल बनोगे ना, दीवानों का गम जो है तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम तकलीफ महसूस करोगे उनकी, तुम्हें पागल होना चाहिए ताकि क्या हो तुम्हारी तकलीफ दूसरे महसूस करें। हदीस में है कि जो अपनी तकलीफ खुद हल कर सकता है और दूसरे के कंधे पे डालता है वो मलऊन शख्स है, ये वही बात कर रहे हैं, हदीस में है ये, जो अपना काम मसला खुद हल कर सकता है, एक तो ना कर नहीं सकता है, दूसरों से ताउन लेता है, ताउन वाला भी रिवा तकवा, लेकिन एक है कि वो खुद कर सकता है, नहीं करता है, दूसरों की गर्दन पर डालता है, खुद को पागल और स्टूपिड बनाता है, दूसरों को कहता है अकलमंदो आओ मेरा प्रॉब्लम सोल्व करो, कहते ये मलून शख्स है, यानी वो जुनून की बेफिक्री और आसाइश को अकल की फिक्रमंदी और नाराहती पर तरजीह देता है, यानी पागल होकर बेफिक्र रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ बरसगीर में भी कहते हैं फकीर इंसान है जी, यानी फकीर इंसान है मतलब क्या, उसको ना किसी दूसरे का फिक्र है ना अपनी फिक्र है, हत्ता दूसरे उसकी रोजी रोटी का सामान फराम करते, वो फकीर बाबा कुठिया लगा के बैठा हुआ उधर, ये गलत है, ये फकीर नहीं है, ये औलिया अल्लाह नहीं है, ये सारे ड्रामाबाज हैं, हमारे यहाँ ये मुसीबत है, हमारे यहाँ फकीर की एक खास टर्मिनोलॉजी बनी है, बड़ी अफसोसनाक पहलू है ये, लेकिन ये नजरिया रुकार सरासर गलत है, क्योंकि जो शख्स इंसानियत के मकाम पर पहुंच जाए और हसासियत और दर्दमंदी की कद्र कीमत को समझ गया हो, वो हरगिज ये नहीं कहता है कि मेरी अकल और मेरी होशियारी और समझदारी ही मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है, پیغمبر اکرم اسلام فرماتے ہیں ہر شخص کی سچی دوست اس کی عقل اور ہوش ہے، ہوشیاری ہے یعنی سمجھداری ہے، اور ہر شخص کی حقیقی دشمن اس کی جہالت اور نادانی ہے۔ تو وہ جو فقیر بنے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں بابے شابے بنے ہوئے ہیں، یہ جاہل اور نادان بنے ہوئے ہیں، بے وقوف بنے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی اونچی چیز ہے، کوئی بڑی چیز ہے؟ یہ تو کوئی عقل اور ہوشیاری ہے، سمجھداری ہے۔ حضور پاک کی حدیث وسائل الشیعہ کتاب جلد نمبر 1 صفحہ 161 کے اندر، لاسٹ منٹ ہے اور وائنڈ اپ ہو رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے، ایک تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، یہ لہٰذا کوئی یہ کہنا جی کہ میں درد کا احساس ہی نہ کروں۔ مثلا بعض اوقات پیرنٹس بچوں کو کہتے ہیں بیٹا چھوڑو، آپ کو چیزوں آپ اپنی زندگی جیو، آپ اپنا کام، یہ ایک تربیت کا حصہ ہے جو ایکسپیرینس ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کا جاہلانہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے۔ ہمیں کیا لینا دینا ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں، اپنا کام کرو، جاؤ چھوڑو جی، ان کو خود دیکھیں گے اور لوگ کریں نا، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم کریں سارا کام، ہم لے لیں۔ یہ معاف کرنا میں ہمارے بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، خواتین میں بھی ہے، یہ شوہروں کو اس طرح پٹی پڑھاتی ہیں، شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح درد رکھنے والی بیوی کو پٹی پڑھاتے ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ آپ کو کیا پڑی ہے، چھوڑو اس کو، ہمیں اپنا دیکھنا ہے، اپنا بناؤ، فیوچر بناؤ اپنا۔ یہ جو فیوچر بنا رہے ہو تو کوئی حیوانوں کا فیوچر، درد کا کہہ رہے ہیں کہ درد رکھنے سے بہتر، لیکن اگر درد کا موجب موجود ہو، خرابی موجود ہو اس کی، خیر یہ اسی موضوع کو ریپیٹڈلی دوسرے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، پیج نمبر 83 میں کہتے ہیں اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسانیت کے اقدار میں سب سے بڑی قدر درد نہ ہے، لیکن درد رکھنا ہے یا درد بری چیز ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے، اور درد اچھی چیز ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ انسان کا درد کیا ہے، اصل میں ہے کیا۔ آدمی کے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن اس بنا پر کہ وہ انسان ہے، وہ درد انسان کا نہیں ہے، کیونکہ ایک حیوان کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں درد ہوتا ہے، تاہم یہ جو حیوانی عضو اور شخصی درد ہیں یہ مشترکہ درد ہیں، حیوانوں میں بھی وہی درد ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں بھی چوٹ لگے درد ہو سکتا ہے، اس کے سر میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں انسان کا درد، اس کا صاحب، انسان کا صاحب درد ہونا، ان کی مراد یہ جسمانی درد تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اور چیز ہے، ہاں وہ درد جو انسان اور انسانیت کی قدروں میں سب سے بڑی قدر ہے، وہ اس درد سے ایک مختلف چیز ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے، 84 میں ہم اس وقت پہنچے ہیں، اور یہاں سے ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان دروس سے استفادہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔